तो बहुत कम है, इसकी बढ़ानी पड़ेगी। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण। मेरा नाम अक्रूर दास है। कितने भक्त लोग यहाँ ऐसे जो मुझे नहीं जानते पहले से, सब जानते हैं। आप सभी भक्तों का इस कौन पंजाबी विभाग में मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज वृंदावन दास ठाकुर का 13वां दिवस है और इस बोर्ड से ऐसा लग रहा है कि आप लोग ये चाहते हो कि मैं इस पे बोलूं, लेकिन मुझे नहीं किसी ने बताया। मुझे तो बताया गया कि चैतन्य चरितामृत पे बोलना है, 10वां अध्याय 182 श्लोक से शुरू करके वो वाला चैप्टर पूरा फिनिश करना है। मेरे पे राइटिंग में ऐसे ही जवानी नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। जो कुछ भी भक्तों की इच्छा है वो पूरी करने की कोशिश अवश्य करेंगे। वृंदावन दास ठाकुर मेनली किस चीज के लिए जाना जाते हैं? चैतन्य भागवत के लिए जाने जाते हैं। और किसके अवतार हैं ये? व्यासदेव जी। भक्तों को तो यहाँ मेरे से ज्यादा मालूम है वृंदावन दास ठाकुर के बारे में। तो और क्या जानना चाहते हैं आप वृंदावन दास ठाकुर के बारे में? वृंदावन दास ठाकुर की माँ के बारे में, चैतन्य महाप्रभु जब मायापुर में लीला कर रहे थे और उन्होंने संकीर्तन यज्ञ शुरू किया, तो क्वाइट अगेंस्ट हिज पर्सनालिटी जब भक्त लोग प्रसाद ले रहे थे तो उन्होंने एक माताजी के प्लेट में से प्रसाद ले लिया। या अपनी प्लेट में से एक माताजी को प्रसाद दे दिया। चैतन्य महाप्रभु कुछ ऐसा नहीं करते थे, लेकिन ये माताजी केवल 4 साल की थी। तो 4 साल की माताजी, उनका नाम था नारायणी। और ये माताजी ने आगे चल के वृंदावन दास ठाकुर को जन्म दिया। अपनी उम्र में और नित्यानंद ऐसा चाहते थे कि वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत की रचना करें, क्योंकि नित्यानंद को ये पता था कि ये शिलवेद व्यास हैं, इन्होंने ही भागवतम की रचना की है, तो इन्हें ही चैतन्य भागवत की भी रचना करनी चाहिए। जैसे कि आपको बताया था पिछली बार, यहां चर्चा की थी कि श्रीमद् भागवतम में कितने श्लोक हैं? 18,000। कभी गिने हैं किसी ने? हमने गिने हैं, 14,095 हैं। लेकिन फिर भी वो 18,000 हैं क्योंकि संस्कृत के नियमों के अनुसार जब 32 सिलेबल जुड़ जाएं तो उसको एक श्लोक कहते हैं। तो बहुत सारे श्लोक जो हैं वो 64 से भी ज़्यादा सिलेबल के श्रीमद् भागवतम में हैं। तो जितने भी सिलेबल्स हैं उनको जोड़ के अगर 32 से डिवाइड किया जाए तो लगभग 18,000 आता है। तो हमने ये चर्चा की थी कि श्रील वेदव्यास ने उन 18,000 या 14,000 या 14,100 श्लोकों में से स्वयं कितने लिखे हैं? स्वयं लिखे हैं मतलब स्वयं बोले हैं, या कहा जा सकता है श्रील वेदव्यास उवाच। कितने श्लोक हैं ऐसे, किसी को याद नहीं? कितने? श्रील वेदव्यास ने श्रीमद् भागवतम के 18,000 या 14,000 श्लोकों में से स्वयं कितने बोले हैं? कितने बोले हैं? 6। ओ, अब कैसे सबको याद आ गया? 6। कितने? 6। प्रभु जी ने इंग्लिश में भी कंफर्म कर दिया है। केवल 6 श्लोक उन्होंने स्वयं बोले हैं, और रचना किसने की है? उन्होंने ही तो की है। तो रचना उन्होंने की है, लेकिन सारी रचना उन्होंने दूसरों को कोट किया है, दूसरे भक्तों को या महानुभावों को या पर्सनालिटीज को या स्वयं भगवान को, स्वयं भगवान के कितने सारे स्वरूपों को कोट किया है। हिंदी में कैसे कहते कोट करना? उदित, उदृत, उदृत कहते हैं। कोट किया है मतलब कि उदृत किया है। किसको मेनली कोट किया है श्रीमद् भागवतम के मेन वक्ता कौन है? सुखदेव गोस्वामी। और सुखदेव गोस्वामी ने स्वयं ये 14,000 में से करीब 5,000, 1/3 ऑफ द भागवतम उन्होंने स्वयं बोलिए सुखदेव गोस्वामी ने। और उसके अलावा सेकंड नंबर पे भागवतम के स्पीकर कौन है? सूत गोस्वामी। ये बहुत कठिन क्वेश्चन है, इसका उत्तर किसी के पास नहीं होता। सेकंड नंबर पे श्रीमद् भागवतम के स्पीकर हैं स्वयं कृष्णा, स्वयं कृष्णा। 1100 श्लोक स्वयं कृष्ण ने बोले हैं श्रीमद् भागवतम में। भागवतम में ज्यादातर 11वें स्कंद में, 12वें स्कंद में भगवान स्वयं, भगवान को स्वयं कोट किया है महर्षि वेदव्यास ने। हम कहते हैं कि भगवत गीता भगवान का शब्द है और भागवतम भगवान के बारे में है, ऐसा ही कहते हैं ना। लेकिन भगवत गीता में तो करीब 650 श्लोक ही इन्होंने स्वयं बोले हैं और भागवतम में 1100 श्लोक, ऑलमोस्ट डबल। उनके बाद सूत गोस्वामी का नंबर है। सूत गोस्वामी पहला स्कंद पूरा स्वयं ही बोलते हैं, दूसरे स्कंद से सुखदेव गोस्वामी को और तीसरे चौथे स्कंद में मैत्रेय को कोट करते हैं। तो मेजर स्पीकर्स ऑफ द भागवतम आर सूत गोस्वामी स्वयं कृष्ण, सॉरी सुखदेव गोस्वामी स्वयं कृष्ण, सूत गोस्वामी नारद मुनि मेजर स्पीकर हैं और बाकी छोटे मोटे सब मिला के करीब 400 स्पीकर्स हैं। सो एंड सो उवाच, ऐसे 400 स्पीकर हैं। अदर मेजर स्पीकर्स जिन्होंने करीब 100 के करीब श्लोक बोले हैं, अक्रूर जी, युधिष्ठिर महाराज, विदुर जी, इस तरीके के पर्सनालिटीज। तो श्रीमद् भागवतम ऑल द महर्षि वेद व्यास ने रचना की है, लेकिन अपने शब्दों की रचना नहीं की, उन्होंने दूसरे भक्तों को कोट किया है। मेनली किसको कोट किया है? सूत गोस्वामी को। इसलिए जब आप भागवतम खोलते हो सबसे पहले स्पीकर कौन है? सूत गोस्वामी। तो मेनली उन्होंने सूत गोस्वामी को कोट किया है। सूत गोस्वामी ने आगे सुखदेव गोस्वामी को कोट किया है। सुखदेव गोस्वामी ने आगे मैत्रेया और नारद और ये सब पर्सनालिटीज को आगे से कोट किया है। तो मेनली महर्षि वेद व्यास ने सूत गोस्वामी की बोली हुई श्रीमद् भागवतम की रचना की, रिटन बाय श्रील वेद व्यास एज स्पोकन बाय श्रील सूत गोस्वामी। क्यों? श्रील सूत गोस्वामी का बोला हुआ लिखा है। और भी आप बहुत सारे ग्रंथों को देखोगे, सब जगह पहले सूत गोस्वामी बोलेंगे। ज्यादातर सब जगह पुराणों में जिनकी रचना श्रील वेद व्यास जी ने की है, ज्यादातर सब जगह आपको सबसे पहले सूत गोस्वामी का नाम मिलेगा। श्रील सूत गोस्वामी उवाच, क्यों? कौन बता सकता है? Why is he always quoting Sut Goswami? क्योंकि जोर से बोलो। कुछ समझ में नहीं आ रहा।
रोमहर्षण जी को व्यासदेव जी ने पुराणों का एक्सपेंशन करने के लिए इंचार्ज बनाया था। तो उन्हीं के ही बेटे हैं सूत गोस्वामी, जो उनके बलराम जी के द्वारा उनके डेथ होने के बाद मतलब मारने के बाद वही फिर वो मतलब ऑथराइज होते हैं।
दैट इज द आंसर। बलराम जी ने सुखदेव गोस्वामी सॉरी सूत गोस्वामी को परफेक्ट सेंसेस प्रदान की थी, उनको ब्लेस किया था कि इसकी सेंसेस परफेक्ट हो जाएंगी। यहां पे भी है किसी की परफेक्ट सेंसेस? जो अपना हाथ स्वयं ऊपर कर सकते हैं उनको, किसी की परफेक्ट सेंसेस नहीं है। किसी भी पर्सनैलिटी की भी परफेक्ट सेंसेस नहीं है। ब्रह्मा की भी सेंसेस फेल हो जाती हैं, लॉर्ड शिवा की भी सेंसेस फेल हो जाती हैं। किसकी सेंसेस परफेक्ट हैं? विष्णु और विष्णु के सारे अवतार की सारी सेंसेस परफेक्ट हैं। कभी आप नहीं सुनोगे विष्णु भगवान ने या किसी अवतार ने, विष्णु तत्व ने कोई गलती कर दी। कभी सुना है? सुना है किसी ने? कोई विष्णु जी के अवतार, विष्णु तत्व या स्वयं कृष्ण, राम या जो कोई भी दश अवतार, कोई गलती नहीं करते। कभी कोई गलती नहीं करते। कोई करने भी लगे तो उसको वहीं का वहीं सुधार के ठीक कर देते। तो सूद गोस्वामी के अलावा परफेक्ट सेंसेस किसी की भी नहीं है। और ये जो ग्रंथ हैं, साहित्य हैं, इनका परफेक्ट होना जरूरी है। तो परफेक्टली कौन बता सकता है? जिसकी सेंसेस परफेक्ट है। शिल वेद व्यास स्वयं भी नहीं एक्सेप्ट करते कि मेरी सेंसेस परफेक्ट है, लेकिन क्योंकि बलराम जी ने सूत गोस्वामी को आशीर्वाद दिया हुआ है परफेक्ट सेंसेस का, इसलिए उनकी सेंसेस परफेक्ट है। तो शिल वेद व्यास ये साहित्य को, ग्रंथों को शुद्ध परफेक्ट बनाने के लिए हमेशा वो लिखा जो जब जैसे जहां सूत गोस्वामी बोले। ऑफ कोर्स स्वयं महर्षि वेद व्यास भगवान के अवतार हैं, आवेश अवतार, आवेश है ना। तो फिर भी अपने आप को वो नहीं मानते कि मैं भगवान का अवतार हूं, मेरी कोई सेंस परफेक्ट है, लेकिन सूत किए। क्यों? क्योंकि सूत को बलराम जी ने वरदान दिया था। अब वही बलराम जी दोबारा से जन्म लेके आते हैं या जन्म लेके लीला करते हैं। किस रूप में? नित्यानंद के रूप में। और वही महर्षि वेद व्यास उस जन्म में लीला करने के लिए आते हैं शिल वृंदावन दास ठाकुर के रूप में। और वही नित्यानंद या वही बलराम वृंदावन दास ठाकुर को या महर्षि वेद व्यास को आज्ञा देते हैं, चैतन्य भागवत की रचना आप करो। मैंने तो चैतन्य महाप्रभु को अच्छी तरह से देखा भी नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन शुरू कर दिया, इसका मतलब उनकी उम्र 24 की हो गई। अब उनकी उम्र 24 की हुई और उनकी मां की उम्र केवल 4 की है। तो वो कब बड़ी होगी, कब उसकी शादी होगी, कब वो वृंदावन दास ठाकुर को जन्म देगी? और उसके 24 साल में तो चैतन्य महाप्रभु तो लीला समाप्त करके चले भी गए। टोटल लीला 48 साल की है, उसमें से 24 साल संन्यास लेने से पहले और 24 साल संन्यास लेने के बाद। बस तो वृंदावन दास ठाकुर अभी तो जन्म लेके कुछ बड़े भी होंगे तभी कोई उनको कहेगा तू चैतन्य भागवत की रचना कर ले। तो उन्होंने तो लगभग चैतन्य महाप्रभु को देखा ही नहीं। तो वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद के चरणों में गिर जाते, कैसे आप कह रहे हो मैं चैतन्य भागवत की रचना कर लूं, कैसे मैं चैतन्य भागवत की रचना कर सकता हूं? मैंने तो, मुझे तो कुछ नहीं पता, मैंने उनको देखा तक नहीं, कैसे मैं उनकी लीलाओं का वर्णन कर पाऊंगा? तो बलराम जी इस बार नित्यानंद के रूप में, चिंता क्या है, मैं हूं ना। ये डायलॉग जो आजकल चल रहा है वो एक्चुअली पुराना है, नया नहीं है। मैं हूं ना तो केवल भगवान को सूट करता है और किसको सूट नहीं करता क्योंकि और किसी के होने से नहीं होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम खुद ही मेयर मॉर्टल्स हैं, हम किसी को क्या किसी समस्या से बचा पाएंगे? हमारा खुद का कुछ भरोसा नहीं दो क्षण का भी, तो हम क्या किसी को कह सकते हैं मैं हूं ना? लेकिन नित्यानंद कह सकते हैं, और नित्यानंद ने चैतन्य भागवत की रचना करवाई और लोचनदास ठाकुर भी उसी समय भक्तों की प्रेरणा के अनुसार चैतन्य भागवत की रचना कर रहे थे, लेकिन एक दूसरे से बहुत दूर थे और व्हाट्सएप के ग्रुप पे ये मैसेज फॉरवर्ड किया नहीं किसी ने कि लोचनदास ठाकुर यहाँ लिख रहे हैं और वृंदावन दास ठाकुर वहां लिख रहे हैं, सेम ग्रंथ। उन्होंने भी चैतन्य भागवत लिखी और लोचनदास ठाकुर ने भी चैतन्य भागवत लिखी, लेकिन जब पता चल गया बाय चांस व्हाट्सएप का मैसेज थ्रू हो गया कि दो चैतन्य भागवत लिखी गई, तो लोचनदास ठाकुर की चैतन्य भागवत का नाम चैतन्य मंगल रख दिया गया। और उस समय ये भी डिक्लेयर किया गया कि जो वृंदावन दास ठाकुर हैं यही भागवतम लिख सकते हैं क्योंकि यही वेद व्यास हैं। तो मेरी तो बहुत ज्यादा बात करने की आदत है, मैं आपको और भी बहुत कुछ बताता रह सकता हूं, लेकिन अगर जो किसी को कुछ पूछने की इच्छा है, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न किसी भी बारे में चैतन्य चरितमृत और भागवतम, भगवत गीता, कुछ भी, तो पूछ सकते हैं। किसी के पास कोई प्रश्न है? सबको सब कुछ पता है यहाँ, सारी चैतन्य चरितमृत और सब कुछ? यस, सूद गोस्वामी, इनको माइक दो प्रभु जी को, एक बार दोबारा से शॉर्ट में पूछो।
हरे कृष्णा, तो आप बता रहे थे कि जो सूत गोस्वामी है वो परफेक्ट लीडर थे, उनको नित्यानंद की कृपा प्राप्त हुई थी और जितने भी वैदिक शास्त्र हैं सब उनके द्वारा बोले गए हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे जब वेद व्यास जी के पास नारद मुनि आते हैं और नारद मुनि उनको कहते हैं कि आपने बहुत सारी चीज़ें लिखी है लेकिन आपने भगवान का वर्णन नहीं किया, तो आप क्या करें श्रीमद् भागवतम कृष्णा के लिए? तो उस तरह से देखा जाए तो सब परफेक्ट नहीं है, एक तरह से उसमें भगवान का वर्णन नहीं है, श्रीमद् भागवतम में भागवतम का भगवान का वर्णन है, इसलिए वो परफेक्ट है। लेकिन और जो है वो किस तरह से परफेक्ट है, थोड़ा और बताएंगे सर?
ओ, थोड़ा पेचीदा प्रश्न है। मैंने कहा कि सूत गोस्वामी परफेक्ट थे, नंबर वन। सूत गोस्वामी परफेक्ट नहीं थे, उनको परफेक्ट सेंसेस का वरदान था, आशीर्वाद था, केवल सेंसेस उनकी परफेक्ट, अदरवाइज वो पूरी तरह से या जिस किसी भी तरह से जीवात्मा, एक रेगुलर लिविंग बीइंग, सोल, एम्बॉडीड सोल लाइक दैट। और नारद मुनि ने, आपने पूछा वेद व्यास जी को जाके कहा कि आपने सब ग्रंथों की रचना की लेकिन अभी आपको संतुष्टि नहीं है, इसलिए भक्ति के बारे में लिखो, भगवान कृष्ण के बारे में लिखो, तो उन्होंने भागवतम की रचना की। उसका अर्थ ये नहीं है कि केवल भागवतम परफेक्ट है, भागवतम सार है, सभी ग्रंथों का सार है। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल भागवतम परफेक्ट है, जितने भी साहित्य, जो कुछ भी महर्षि वेदव्यास ने लिखा है, इंक्लूडिंग आध्यात्म रामायण, महर्षि वेदव्यास ने रचना की है, वो सभी परफेक्ट है। उसमें से 18 पुराण है, उसमें से 6 पुराण तामसिक पुराण है, 6 पुराण राजसिक पुराण है, और 6 पुराण सात्विक पुराण है। तो तामसिक होते हुए भी वो परफेक्ट, राजसिक होते हुए भी वो परफेक्ट हैं, और सात्विक होते हुए भी वो परफेक्ट हैं। द नॉलेज इज परफेक्ट ऑल्दो इट इज इन तामसिक, राजसिक और सात्विक मोड। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो जैसे मंत्र की जगह तंत्र, तंत्र तो बुरे होते हैं, लेकिन परफेक्टली नोइंग द तंत्र इज ऑल्सो परफेक्ट, ऑल्दो द नॉलेज इज नॉट सो डिजायरेबल। तंत्र फॉर पीपल हु आर इन द मोड ऑफ गुडनेस, जो लोग सात्विक हैं उनको तंत्र में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी परफेक्ट तंत्र इज परफेक्ट तंत्र। इवन आज की जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस चलती हैं, उसमें किसी ने प्रोग्राम लिख दिया, अगर वो परफेक्टली लिखा गया है, परफेक्टली एक्सिक्यूट हो रहा है, तो इट इज परफेक्ट। इट इज नॉट दैट भगवत गीता ही खाली परफेक्ट है या भागवतम ही खाली परफेक्ट है। परफेक्ट वर्ड इज बीइंग यूज्ड फॉर नॉलेज। इज दैट क्लियर? माइक नहीं। तामसिक पुराण आपको तमस को हाईएस्ट बताएगा, राजसिक पुराण राजसिक नॉलेज को हाईएस्ट बताएगा, सात्विक पुराण सात्विक नॉलेज को हाईएस्ट बताएगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो परफेक्ट नहीं है। इट इज परफेक्ट इन इटसेल्फ एज टू व्हाट इट इज ट्राइंग टू गिव यू। जो तामसिक पुराण है वो तामसिक नॉलेज देने की कोशिश कर रहा है और देता है, लेकिन परफेक्टली देता है, परफेक्टली तामसिक, बट वी डोंट वॉन्ट तामसिक, सो दैट्स वाई वी ऑप्ट फॉर गुडनेस, सात्विक। परफेक्ट होना या बेस्ट होना दो अलग अलग चीजें। बेस्ट क्या है? सारे ग्रंथों में से बेस्ट क्या है? भागवतम। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि भागवतम इज द ओनली परफेक्ट स्क्रिप्चर, और स्क्रिप्चर भी परफेक्ट है अपने आप में, लेकिन क्योंकि हम सात्विक प्रवृत्ति से सात्विकता में आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए हम सात्विक पुराणों पे ध्यान देते हैं, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, ऐसे। यू अंडरस्टैंड? बीइंग परफेक्ट एंड बीइंग बेस्ट आर टू डिफरेंट थिंग्स। परफेक्शन इज मेंशन्ड फॉर नॉलेज ओनली, बेस्ट इज ऑफ कोर्स श्रीमद् भागवतम। क्लियर? नॉट क्लियर? क्लियर? एनी अदर क्वेश्चन? किसका पहले? प्रभु जी का? प्रभु जी को माइक दो. एक दो लीला ऐसी जो चैतन्य भागवत में है और चैतन्य मंगल को मैं नहीं कंपेयर कर सकता, चैतन्य चरितामृत को कर सकता हूं. भागवत, चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत के कंपैरिजन में मैं कुछ लीला बता सकता हूं. जो चैतन्य भागवत में एक बहुत सुंदर लीला है जो चैतन्य चरितामृत में नहीं है, ये चैतन्य महाप्रभु की बाल लीला है. और चैतन्य महाप्रभु जैसे के नौटी निमाय के नाम से जाने जाते थे, बहुत शैतान थे, बहुत शैतानी करते थे. तो शैतानी में बालक कभी अपनी मां को मार भी देते हैं. बॉयज हैं, समटाइम्स दे डोंट रियलाइज के मदर को चोट भी लगती है. तो मदर को कभी कभी बॉयज को ये सिखाना पड़ता है कि हमें चोट भी लगती है भैया. आपका तो लाड़ प्यार हो गया और यहां हमारे ब्लैक एंड ब्लू हो गए. तो एक बार माता सची ने पड़ोसनों को साथ में लेके डिसाइड किया कि आज निमाय को ये शिक्षा देने वाले हम कि मां को चोट भी लगती है, बेहोश भी हो सकती है, मर भी सकती है बेचारी. तो राइट मोमेंट पे जब निमाय ने सची माता को मारा तो वो बेहोश होकर लेट गई. शी इज एक्टिंग कि मैं बिल्कुल बेहोश हूं, लॉस्ट कॉन्शियसनेस. इतना जोर के मारा है कि मेरे तो होश उड़ गए, मैं बेहोश. तो पड़ोसनों से पहले से सलाह की हुई थी. तो पड़ोसनों ने आके निमाय को अब खूब डांटा, देख तूने क्या किया तेरी मां को, बेहोश हो गई, क्यों मारता है इतना, इतना जोर से मारता है कोई अपनी मां को, जा आप जाके जल्दी से नारियल लेके आ. अब चैतन्य महाप्रभु बहुत घबरा गए, रियली मेरी मां बेहोश हो गई, मैंने मेरी मां को मारा, इतनी बड़ी भूल हो गई. अब एकदम से नारियल कहां से लाएंगे? तो ये तो डिवाइन है, उन्होंने अपनी डिविनिटी दिखा दी, ऐसे दो हाथ किए और दो नारियल. ये लोग अब सारी पड़ोसन भी हैरान है, माय गॉड ये कहां से तो ये कैसे है आकाश में से दो नारियल. कुछ भी करो, जल्दी से करो, मेरी मां को ठीक करो. अब मैं प्रॉमिस करता हूं, सब पड़ोसनों ने प्रॉमिस करवा लिया कि अब तेरी मां ठीक नहीं होगी जब तक तू प्रॉमिस नहीं करेगा नेवर टू हिट हर अगेन, कभी भी उसके ऊपर हाथ नहीं उठाने का. हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं नहीं उठाऊंगा हाथ उसके ऊपर, बस एक बार मेरी मां को ठीक कर दो. तो मां तो वेट कर रही थी, मां ठीक हो गई. और जो चोरों की लीला है, चैतन्य महाप्रभु को चोर उठा के ले गए थे। चैतन्य चरितमृत में भी है, लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उसको इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। बहुत सी चीजें जो ऑलरेडी, बिकॉज चैतन्य भागवत के बहुत समय के बाद चैतन्य चरितमृत लिखी गई। तो जब आप चैतन्य चरितमृत पढ़ेंगे तो कई जगह ऐसा रेफरेंस आएगा, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहेंगे ये चीज अब मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये ऑलरेडी चैतन्य भागवत में एक्सप्लेन है। लेकिन उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजों को एक्सप्लेन किया है जो न चैतन्य भागवत में न चैतन्य मंगल में है। उसमें एक चीज मेन है, कौन जानता है? चैतन्य चरितमृत में मेन चीज क्या है? अंत्य लीला। कौन पढ़ता है अंत्य लीला? राय रामानंद। मेन चीज है डिवोटी इंटरेक्शन, एक दूसरे के साथ डिवोटीज कैसे डील करते हैं। इसलिए चैतन्य चरितमृत बहुत बड़ा ग्रंथ है। चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल छोटे ग्रंथ हैं। ये चैतन्य चरितमृत, सॉरी चैतन्य मंगल और चैतन्य भागवत ज्यादा करके चैतन्य महाप्रभु के जीवन पे फोकस करते हैं, और चैतन्य चरितमृत चैतन्य महाप्रभु के जीवन पे कम फोकस करती है। क्योंकि जीवन पे फोकस किए हुए दो ग्रंथ ऑलरेडी लिखे जा चुके हैं। ये मेनली फोकस करती है डिवोटीज के इंटरेक्शन, एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, क्या होता है। जैसे कि आपका वो था आज जो करना था, उसमें चैतन्य महाप्रभु का इंटरेक्शन है काशीश्वर पंडित से। वो पहले अपने आप को कुछ बताते हैं, चैतन्य महाप्रभु उन्हें अपना गुरु मान लेते हैं, और फिर वो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं मुझे आप इतना मान इसलिए दे रहे हो क्योंकि आप भगवान हो और मैं भक्त हूं, भक्त तो भगवान तो भक्त को हमेशा मान देते हैं, अपने से ज्यादा मान देते हैं। तो बहुत सारी जगह पे ऐसे डिवोटी इंटरेक्शन है कि किसी ने क्या कहा, दूसरे ने क्या जवाब दिया। हाउ टू हम्बली डील विद डिवोटीज, ह्यूमिलिटी। ज्यादातर हम लोग फॉर द मोस्ट पार्ट उसी तरह से आपस में एक दूसरे से डील करते हैं जैसे कि चैतन्य चरितमृत में डिवोटी इंटरेक्शन बताए गए हैं। नॉट सो परफेक्टली, लेकिन वो धीरे धीरे हमारी हैबिट बन जाती है क्योंकि हम दूसरों भक्तों को, सीनियर भक्तों को ऐसे ही आपस में इंटरेक्ट करते हुए देखते हैं, तो वो इंटरेक्शन हम सीख जाते हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चोरों को चोर बता के छोड़ दिया, लेकिन ये चोर पिछले जन्म के चोर थे जिनको ये आशीर्वाद मिला हुआ था। के आपको चोरों की कथा बता ही देता हूं। एक बार कुछ साधु एक गांव से जा रहे थे, तो कई बार ऐसा होता है कि गांव से साधु होके जा रहे हैं तो जो अच्छे लोग हैं, साधु सेवा प्राप्त करने में इच्छुक हैं, वो हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करते हैं, प्लीज 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 हमारे गांव में रुक जाओ, हमारे घर में रुक जाओ, थोड़ा हम आज रात को आपकी सेवा करेंगे, हमें सेवा का अवसर दो फिर चले जाना, या कुछ दिन के लिए हमारे गांव में प्लीज पड़ाव डाल लो, हम आपकी सेवा करेंगे फिर आप चले जाना। तो ऐसे कुछ लोगों ने एक गुरु और उनके शिष्य जो तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे उन्हें कुछ दिन के लिए रोक लिया कि आप हमारे घर में आके निवास करो। बहुत सुंदर भाव था उनका, बहुत डिवोटेड नजर आ रहे थे। तो गुरु ने कहा अच्छा चलो ठीक है, बहुत डिटर्मिंड भी नजर आ रहे थे, ये चलो ठीक है आपका जो भाव है वो हम स्वीकार कर लेते। तो थ्री मैन, तो जब उनके घर गए थोड़ी देर में पता चला ये तो बड़ा अजीब घर है, क्यों, कोई स्त्री तो है ही नहीं, ये तो बिना स्त्री का घर है, ये कैसा घर है जिसमें कोई स्त्री नहीं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम सब तो ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, हमारे लिए तो और भी अच्छा और भी खुश हैं। लेकिन पता चला कि जो हमारे होस्ट लोग हैं ये रात को कहीं गायब हो जाते हैं और सुबह को वापस आ जाते हैं। सारा दिन भक्तों की साधुओं की सेवा करते हैं और रात को काम पे चले जाते हैं। तो किसी तरह से गुरु को आइडिया हो गया कि ये लोग चोर हैं। गुरु ने पूछा रात को कहां गए थे, कि हम ऐसे काम पे गए थे, कि अच्छा काम पे गए थे, बन गया काम कि नहीं, कल तो नहीं बना लेकिन बन जाएगा, आप कोई चिंता नहीं करो। तो कुछ दिनों के बाद गुरु ने उनके अंदर डिटर्मिनेशन देखी। तो हालांकि गुरु को यह समझ में आ गया कि ये लोग चोर है, फिर भी गुरु ने उनके अंदर एक अच्छा गुण देखा डिटर्मिनेशन का, तो उसको छोड़ के नहीं गए। लेकिन जिस दिन डिसाइपल्स को पता चल गया कि ये लोग चोर हैं, उन्होंने तो अपनी गीली धोती कोपिन सब कुछ तार पे से उतार लिया और गीला ही पैक करके कहते नहीं हम तो जा रहे हैं, हम चोरों के घर नहीं रहे, एक मिनट नहीं रहेंगे, क्या करें। सारे डिसाइपल्स अपना झोली डंडा बांध के तैयार हो गए, हमें तो हम नहीं रहेंगे। तो गुरु ने बुलाया उन चोरों को और उनको एक प्रेरणा दी, शिक्षा दी कि देखो तुम लोग यहां गांव में जो सब काम करते हो मुझे मालूम है, तुम्हारे गरीब लोग रहते हैं यहां, तुम्हारे हाथ कुछ खास लगने वाला नहीं है, तुम लोग अच्छे लड़के हो तो इसलिए मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम अच्छा काम कैसे कर सकते हो। जो एक बार में इतना धन तुम्हारे हाथ लग जाए कि फिर और की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि अच्छा ये तो गुरुजी बहुत अच्छे मिल गए। तो गुरुजी ने बताया कि वृंदावन चले जाओ और वहां जाके श्रीनंद नंदन को ढूंढो, जब श्रीनंद नंदन तुम्हें मिल जाएंगे तो वो पूरी तरह से सारे गोल्ड के हीरे मोती और क्या क्या रत्न पहने हुए रहते हैं। तो वो एक 8 साल का बच्चा है, आपको मिल गया तो उससे लूटना आपके लिए कोई कठिन कार्य नहीं है। तो बहुत दिन तक इन्होंने वृंदावन जाके ढूंढा, एक चोर उसमें से वापस आ गया, ये वाइल्ड गूस चेज है, ये मेरे बस का नहीं है, मैं जा रहा हूं अपने गांव वापस। लेकिन दो जो पूरी तरह से डिटर्मेंट थे, उनको श्रीनंद नंदन की प्राप्ति हो गई। एक दिन सार मारते 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 जब उनके हृदय में से हर कामना, हर इच्छा, हर चीज साफ हो गई और केवल एक डिजायर उनके हृदय में रह गई कि हमें श्रीनंद नंदन को ढूंढना है, तो श्रीनंद नंदन प्रकट हो गए। आप श्रीनंद नंदन को प्रकट होते ही इनके भाव चेंज हो गए, इनके मन में इतने सुंदर बालक और इतने सुंदर आभूषण देख के ये आया कि इसको, इससे कुछ लेना तो दूर, इसको हम दें कैसे। हाउ मे आई सर्व हिम विद अ कैपिटल एच रादर देन हाउ मे आई टेक फ्रॉम हिम। तो भगवान ने फिर भी चेक करने के लिए उनको ऑफर किया, तुम मुझे बुला रहे थे इतने दिन से, तुम मुझे यहां जंगल में ढूंढ रहे हो कि हां, तो मैं आ गया, बोलो, तुम मुझे ढूंढ रहे थे, बुला रहे थे ना, मैं आ गया, बोलो अब क्या बात है। कि बात कुछ नहीं है, केवल आपके दर्शन चाहिए थे मिल गए। तो भगवान ने कहा मेरा दर्शन अमोघ है, कुछ ना कुछ तो मांगना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब आप नेक्स्ट टाइम लीला के लिए आएंगे तो हमें सेवा का मौका दीजिएगा। तो ये चोर, फिर से वो दो चोर नवदीप में जन्म ले लिए और चैतन्य महाप्रभु के फर्स्ट बर्थडे को वही उनके स्वर्ण आभूषण से अट्रैक्ट होके उनको उठा के ले गए। लेकिन जब आप किसी बच्चे को उठा लेते हो अपने सर पे, तो बच्चा क्या करता है, हाँ, रोता है, नहीं करेगा क्या? आपके सर को अच्छी तरह से पकड़ लेगा। आप चैतन्य महाप्रभु ने ये थोड़ी थोड़ी देर में एक्सचेंज कर रहे हैं, दोनों के सरों को अच्छी तरह से पकड़ लिया। देखो कितना बड़ा आशीर्वाद इनको प्राप्त हो रहा है और इनकी सद्बुद्धि हो गई और ये चैतन्य महाप्रभु को वहां छोड़ के उसके बाद इन्होंने केवल हरि नाम का जप किया और कुछ नहीं किया। तो उस तरह से भगवान ने चोरों का भी उद्धार कर दिया, क्योंकि उनको सद्गुरु मिल गया था, सद्गुरु जिसने उनके अवगुण नहीं देखे, गुण देखे। केवल एक गुण था सद्गुरु को, वो ही दिखा, कोई अवगुण दिखा नहीं। ऑल अवगुण एक्सेप्टेड, ये गुण है। इस गुण से, केवल एक गुण से भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो उन्होंने एक गुण से उनको भगवान मिला दिया। दोबारा से भी जन्म हुआ, भगवान की लीला में भी पार्टिसिपेट किया और भगवान के अच्छी तरह से, इस तरह से आशीर्वाद कितने लोगों को आपने सुना है किसी भी ग्रंथ में के भगवान ने किसी को इस तरह से आशीर्वाद दिया हो, कितने लोगों को सुना है? हार्डली एनीबॉडी। ज्यादातर तो कोई भगवान के पास भागता हुआ आता है तो वैसे ही भगा देते, बस मैं भगवान नहीं हूं, राम रूप में कहते हैं, मैं क्या, मैं तो दशरथ नंदन राम हूं, मैं कोई भगवान नहीं हूं, जाओ। चैतन्य महाप्रभु, मैं कुछ नहीं, मैं तो ग्वाला था। कृष्ण रूप में भी भगवान आसानी से नहीं मानते भगवत गीता के अलावा कि मैं भगवान हूं, तो कौन किसी को इस तरह से आशीर्वाद देगा? लेकिन इन चोरों को अच्छी तरह से आशीर्वाद प्राप्त हुआ। कितना भाग्य है। तो कुछ लीलाएं आपको वृंदावन दास ठाकुर की। अब आपका टाइम हो गया है, मुझे मेरे ऊपर कृपा करें और आशीर्वाद दें। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्रील वृंदावन दास ठाकुर महाराज तिरुभाव दिवस की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।